नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक टीवी चैनल से साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि चाहे रूसी तेल हो या कुछ और, दरों और लॉजिस्टिक्स के मामले में हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेंगे। श्रीमती सीतारामन ने दोहराया कि भारत के आयात बिल में कच्चे तेल का योगदान सबसे ज्यादा है।
Whether it is Russian oil or anything else, it's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. Where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our pocket, highest in terms of import.
वस्तु और सेवा कर की नई व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि इससे नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा और इससे पूंजीगत व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में सुश्री सीतारामन ने कहा कि 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो शून्य या 5-18% तक का जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और एल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे।
100% because there's more money given already through the income tax cut. The rates are coming down. So the citizen now has a choice to meet his aspirations and his expectations. He cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are beyond my affordability. Now everything has come down. I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. There's nothing beyond.
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों को सहयोग देने के प्रयासों पर कार्य कर रही है जिन पर 50% अमरीकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है। सुश्री सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य न केवल सभी वस्तुओं का देश में उत्पादन करना है बल्कि अनिश्चित वैश्विक व्यापार नीतियों का आत्मसम्मान के साथ सामना करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की थी। देश की अर्थव्यवस्था को अधिक कार्यकुशल और लोगों के हितों के अनुकूल बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के क्रम में 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने दरों को युक्तिसंगत बनाने की स्वीकृति दी। इन सुधारों के बाद अब अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में केवल 5 और 18% के 2 स्लैब रह गए हैं। इससे पहले 5%, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को साहसी और व्यापक बताया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसाधारण के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में हाल की मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय दल ने कल रियासी जिले का दौरा किया। केंद्रीय दल ने समुदाय आधारित आपदा तैयारियों को मजबूत करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की बहाली को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। पंजाब में वर्षा कम होने के साथ राज्य की नदियों में बाढ़ का प्रकोप कम हुआ है। अभी 22 जिलों के 1948 गांवों के 3,84,000 लोग प्रभावित हैं। गुरदासपुर से सबसे अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला प्रशासन ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है। गणेश चतुर्थी का उत्सव आज संपन्न हो रहा है। आज अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। मुंबई में 65 प्राकृतिक जलाशयों और 205 कृत्रिम पोखरों में विसर्जन की व्यवस्था की गई है। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 30,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुरुष एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण के मैच में आज भारत का सामना चीन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। एक जीत और एक ड्रॉ के साथ भारतीय टीम 4 अंक अर्जित करके अंक तालिका में शीर्ष पर है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्यना सबालिंका का सामना अमरीका की अमांडा अनीसिमोवा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।